समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो मनोज, गुड मॉर्निंग एंड हेलो लिसनर्स, ट्यूसडे मॉर्निंग ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। वेलकम टू आवर न्यूज मैगजीन शो आज सवेरे, फिल्ड विद प्लेंटी ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ, सो स्टे विद अस एंड एंजॉय। मनोज, बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस।
जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसी महीने में दूसरी बार ओडिशा दौरे पर जा रहे हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान वे राज्य के दौरे पर थे। ओडिशा सरकार की ओर से आयोजित उत्कर्ष ओडिशा प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र के पूर्वोदय दृष्टिकोण के साथ साथ ओडिशा को देश में अग्रणी निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख उद्योगपति भाग लेंगे।
India and China have agreed on a slew of measures during the meeting of the Foreign Secretary Vice Minister mechanism to stabilize and rebuild bilateral ties. The new understandings include the resumption of Kailash Mansarovar Yatra, restoration of direct flights between the two countries, and sharing trans-border river data, among others. Foreign Secretary Vikram Misri, who was on a two-day visit to China, attended the meeting. The External Affairs Ministry said in a statement the relevant mechanism will discuss the modalities for resuming the Kailash Mansarovar Yatra as per existing agreements. The two sides also agreed to hold an early meeting of the India-China expert-level mechanism to discuss resumption of provision of hydrological data and other cooperation pertaining to trans-border rivers.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित विभिन्न अतिथि शामिल होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा कल देहरादून पहुंची। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय खेल अगले महीने की 14 तारीख तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं होंगी।
Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal began his official visit to Oman with a productive meeting with KS bin Mohammed Al Yusuf, Oman's Minister of Commerce, Industry and Investment Promotion. The discussions focused on advancing negotiations for the Comprehensive Economic Partnership Agreement, strengthening bilateral trade and investment ties, identifying new avenues for collaboration. Mr. Goyal expressed optimism about the progress, stating that the talks would receive further momentum during the upcoming Joint Commission meeting, JCM. Mr. Goyal is on a two-day visit to Muscat for the 11th Joint Commission meeting with his Omani counterpart starting today.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज अबू धाबी में रायसीना मध्य पूर्व के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तालमेल बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में चुनौतियां और अवसर दोनों आते हैं और सच्ची दोस्ती की परीक्षा के साथ साथ वो और भी सुदृढ़ होती है। डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के साझा मूल्यों और आपसी विश्वास का भी उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के संयुक्त दृष्टिकोण के तहत दोनों देशों की साझेदारी ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को आश्वासन दिया कि भारत उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सक्रिय समर्थन के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार का आभार व्यक्त किया।
Indian Railways has achieved a significant milestone by upgrading over 23,000 track kilometers of the rail network to support train speeds of up to 130 kilometers per hour. Additionally, more than 54,000 track kilometers of tracks have been upgraded to support speeds up to 110 kilometers per hour. The Indian Railways said, "This systematic enhancement ensures seamless connectivity across various regions and bolsters the overall operational efficiency of railways."
अब खबरें महाकुंभ की।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
प्रयागराज महाकुंभ में कल बुधवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि परेड ग्राउंड स्थित केंद्रीय अस्पताल किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।
प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाला केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया है। इसके अलावा किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए केंद्रीय अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि मौनी अमावस्या को देखते हुए अस्पतालों में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ा दिया गया है।
महाकुंभ के जो नेक्स्ट स्नान आ रहा है, सबसे बड़ा हमारा मौनी अमावस्या, इसमें हमारी प्लानिंग ये है कि हम 27 तारीख से लेके 30 तारीख तक लगातार हम लोग 24 घंटे की OBD करेंगे, जो अभी 12 घंटे की चलती है, और साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको भी हम 24 घंटे इसके साथ संचालित करेंगे। साथ में जो हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पे रिप्लाई कर देंगे।
इसके अलावा 80 आयुष डॉक्टरों की एक टीम 20 OPD केंद्रों पर 24 घंटे चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। इन अस्पतालों में दी जाने वाली सभी चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
यस मनोज, वी स्टार्ट न्यूज फ्रॉम चेन्नई। Coromandel International Limited, an agri-inputs company, is organizing 10 health camps in collaboration with Shankara Netralaya Eye Hospital to address the healthcare challenges faced by the fishing community in Ennore. This initiative aims to provide accessible and essential eye care services to fishermen and their families who often encounter significant barriers to specialty healthcare due to time constraints and the lack of dedicated ophthalmology facilities in the region. The camps held at various locations in Ennore are expected to benefit approximately 1,200 people, primarily those between the ages of 40 and 65. Air Commodore Tapan Sharma has assumed command of Air Force Station Tambaram. A ceremonial parade marked the occasion of his taking over the command. Commissioned as a fighter pilot in the flying branch of the Indian Air Force in December 1997, Air Commodore Sharma is a Category A qualified flying instructor and an alumnus of the National Defence Academy and the Defence Services Staff College, Wellington. Getting to Bengaluru now, the Climate Action Cell of Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike, BBMP, has launched the Blue Green Awards to recognise and celebrate individuals and groups making significant contributions to Bengaluru's climate action goals. The awards will honour individuals, communities, resident welfare associations, academic institutions and organisations dedicated to climate conservation and ecological improvement. This initiative seeks to acknowledge the often overlooked efforts of those tackling climate challenges and promoting sustainability. Interested participants can register online via the BBMP website. A panel of experts will review the best projects and the selected recipients will be honoured at a public event. Getting to Hyderabad now, The Telangana Education Commission, headed by Chairman A. Murali, submitted its report yesterday to State Chief Secretary Shanti Kumari regarding the implementation of the midday meal scheme and mess facilities in government schools and residential institutions. This follows a series of food poisoning incidents in schools across the state in the last few months that raised concerns about food safety and quality. Over the past few weeks, the Commission conducted inspections in hundreds of government schools, residential institutions, hostels, KGBWs and Anganwadi centres across all 33 districts of the state. The team reviewed kitchen facilities, food preparation, storage practices, dining arrangements to assess the conditions under which the meals are provided to students. Extensive discussions were held with stakeholders, including parents, mess owners and teachers, to gather feedback and recommendations for improving the quality and safety of meals serve to students. Manoj, over to you now for rest of the news.
जी सुभद्रा, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचार। पहले दिल्ली समाचार। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने कल निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली को हरियाणा से मिलने वाली पानी की आपूर्ति में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, जिससे दिल्ली में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सरकार को आज दोपहर 12 बजे तक इस मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तुरंत पेश करने का निर्देश दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी सूत्रों ने कहा कि हरियाणा सरकार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर इस दावे के लिए मुकदमा करेगी कि हरियाणा यमुना के पानी में जहर घोल रहा है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करेगी। अब महाराष्ट्र मुंबई का रुख करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के बाद बैंकिंग प्रणाली में तरलता नकदी बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए हैं। आरबीआई ने 30 जनवरी 13 फरवरी और 20 फरवरी को 20,000 करोड़ रुपए की तीन किस्तों में कुल 60,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की मुक्त बाजार परिचालन ओएमओ खरीद नीलामी आयोजित करेगा। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए 56 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो वीआरआर नीलामी 7 फरवरी को आयोजित की जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि केंद्रीय बैंक उभरती हुई तरलता और बाजार की स्थितियों की निगरानी करना जारी रखेगा और व्यवस्थित नकदी की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल समाचार। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में दोषी संजय राय की मौत की सजा पर पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति देवांशु बोसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने की। राज्य सरकार ने मृत्युदंड की सजा की मांग करते हुए न्यायालय में अपील की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राज्य सरकार की अपील को इस आधार पर चुनौती दी है कि वो मामले की जांच कर रही है और राज्य सरकार के पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले सीबीआई ने सत्र न्यायालय में संजय राय के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने कहा कि ये मृत्युदंड देने के लिए दुर्लभतम मामला नहीं है।
Welcome back to Arts Away, friends, coming to you from our studios of Akashwani, Delhi. Now, let's go on to some sports now, starting with Hockey India League news. In the Men's Hockey India League, Surma Hockey Club secured a hard-fought 5-3 victory against the Vedanta Kalinga Lancers at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela last evening. In another match, Shachi Rar Bengal Tigers scripted a come-from-behind 2-1 victory over Delhi SG Pipers in Rourkela. A report.
The Delhi SG Pipers ended their campaign of Hockey India League winless as they fell to a 1-2 loss against Rachi Royal Bengal Tigers. Delhi Pipers scored first goal via Thomas Dominey, but their hopes of first win in the last match were shattered. As for Rachi Royal Bengal Tigers, Rupinder Pal Singh and Sebastian Docker scored in 55th and 59th minute. Initially, the Delhi SG Pipers were leading for almost an entire match, but they lost the grip in the very last minutes in the fourth quarter. Delhi SG Pipers took lead in second quarter sure and seemed destined to win their first match in Hockey India League. But Tigers had other plans. Rupinder Pal Singh helped Tigers to equalize before Sebastian Dockyer found the winner with just 2 minutes left. With this win, Sachin Ravindgol Tigers moved on the top of the points table with 18 points and Delhi Pipers are at the bottom of the points table with 5 points and they also ended the campaign in Hockey India League. In the second match of the day, Surma Hockey Club was in a must-win situation. The JSW Surma Hockey Club defeated the Vedanta Lancers by a margin of 5-3 in a thrilling and high-scoring match. Surma showed great resilience, coming back from an early deficit and then extending their lead, holding off a late Lancers comeback. The match featured a lot of penalty corners and multiple goal scorers on both sides. It was Dilpreet Singh who gave an early lead to Kalinga Lancers in the 5th minute. For JSW Surma Club, Prabhjot Singh's deflection goal at the end of the second quarter shifted the momentum and the goal was equalized at 1-1. Surma's gameplay in the 3rd quarter was the turning point of the whole match where their quick penalty corners and back-to-back goal gave Surma momentum and they took control of the whole match. As the match was heading into 4th quarter, Vedanta Kalinga Lancers showed fighting spirit with the late attempts but they could not overcome Surma's lead. JSW Surma Hockey Club demonstrated a strong ability to convert penalty corners and defended well in the final minutes to see out the match. With this win, Surma Hockey Club moved 3rd in the points table with 17 points after 9 matches and kept their hope alive for semi-finals. And Kalinga Lancers are at 6th place with 12 points. Today in Hockey India League, Team Gunasika will play against Hyderabad Tufans at 8:15 p.m. in Birsa Munda Stadium, Rourkela. This is Manoj Yadav reporting for Akashvani News.
अंडर 19 महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 6 चरण के अंतिम मैच में आज पिछले विजेता भारतीय टीम का सामना स्कॉटलैंड से होगा। ये मैच मलेशिया में क्वालालंपुर के बायु एमास ओवल मैदान में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 महिला टीम के साथ भारतीय टीम पहले ही इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरे ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें अंतिम 4 में पहुंची है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच सुपर 6 चरण संपन्न होने के बाद शुक्रवार को खेले जाएंगे। अब मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have fog mist in the morning. Partly cloudy sky will be seen later on. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist early morning. Minimum temperature was 15 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy fog mist in the morning and partly cloudy sky will be seen later on. The temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 28 जनवरी है। आज ही के दिन 1835 में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई।
In 1813, English author Jane Austen's classic Pride and Prejudice was published by Thomas Egerton in the United Kingdom. In 1896, Walter Arnold of East Peckham received the world's first speeding ticket.
आज ही के दिन 1878 में येल डेली न्यूज यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र बना।
In 1956, American singer-entertainer Elvis Presley, the king of rock and roll, made his first national television appearance.
आज ही के दिन 1887 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर का काम शुरू हुआ।
In 1958, the Lego toy company patented the design of its Lego bricks. And 1985, Music's biggest stars, collectively dubbed USA for Africa, assembled at Los Angeles A&M Recording Studios to record We Are the World. Produced by the great Quincy Jones and written by Michael Jackson and Lionel Richie, the Grammy-winning charitable single USA for Africa, We Are the World, raised more than $50 million for the Humanitarian Fund.
आज ही के दिन 1909 में क्यूबा पर से अमेरिका का नियंत्रण समाप्त हो गया और आज ही के दिन 1932 में जापानी सेना ने शंघाई चीन पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1961 में एचएमटी घड़ियों की पहली फैक्ट्री की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई।
In 1998, Italian painter sculptor Michelangelo's iconic painting Christ and the Woman of Samaria sold for $7.4 million. In 2017, American tennis icon Serena Williams defeated her sister Venus Williams to win her seventh Australian title and record 23rd Grand Slam event singles victory. And also the same sports news, in 2018, Roger Federer defeated Marin Cilic to win his record 20th Grand Slam title at the Australia Open.
आज ही के दिन 1999 में भारत में पहली बार संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ और आज ही के दिन 2000 में अंडर 19 का युवा विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय को याद करते हैं। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में शामिल हैं। आजीवन ब्रिटिश राज शक्ति का सामना करते हुए अपने प्राणों की परवाह ना करने वाले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली थी। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर हिसार में वकालत प्रारंभ की थी, किंतु बाद में स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के कारण वे आर्य समाज के प्रबल समर्थक बन गए। यहीं से उनमें उग्र राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। लाला जी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त है जो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक को प्राप्त है। लाला लाजपत राय ने अपने सहयोगियों लोकमान्य तिलक तथा विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर कांग्रेस में उग्र विचारों का प्रवेश कराया। लाला लाजपत राय ने देश भर में स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए अभियान चलाया। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया तो लाला जी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले का जमकर विरोध किया। 3 मई 1907 को ब्रिटानिया हुकूमत ने उन्हें रावलपिंडी में गिरफ्तार कर लिया। रिहा होने के बाद भी लाला जी आजादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे।
Birth anniversary of nuclear physicist Raja Ramanna, who was picked by Homi Bhabha to help shape India's nuclear physics and energy programs. Ramanna studied for his PhD at King's College London, then joined the Tata Institute of Fundamental Research, the root of India's atomic energy program. While there, he contributed in different areas of neutron nuclear reactor physics. In his later career, he was heading the Bhabha Atomic Research Center when India carried out its first nuclear test at Pokhran in 1974. He also oversaw developments in advanced accelerators, lasers, other technologies. And of course, he's been awarded multiple honorary doctorates by various universities. He was awarded the Padma Vibhushan, India's second highest civilian decoration, in 1975. Besides this, he was also a talented pianist, wrote the structure of music in rag and western systems.
Aaj jayanti hai sahityakar Vidya Nivas Mishra ki. Unka janm 28 January 1926 ko Gorakhpur, Uttar Pradesh mein hua tha. वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने माने भाषाविद थे। हिंदी साहित्य को अपने ललित निबंधों और लोक जीवन की सुगंध से सुवासित करने वाले विद्यानिवास मिश्र ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने आधुनिक विचारों को पारंपरिक सोच में खपाया था। साहित्य समीक्षकों के अनुसार संस्कृत मर्मज्ञ मिश्र जी ने हिंदी में सदैव आंचलिक बोलियों के शब्दों को महत्व दिया। मिश्र जी के अभूतपूर्व योगदान के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था।
28 January 1930, birth anniversary of world-renowned singer of classical music, Pandit Jaisraj. He was associated with Mevati Gharana. In his 80 years of career, he is known for his unconventional mixing of khayal with elements of bhakti ras, making use of structures that were traditionally used in semi-classical music. And of course, friends, he created a unique form of jugalbandi called Jasrangi, in which a male and a female singer sing different ragas in their respective scales to merge their individual displays into one unified performance. Pandit Jasraj is also honored with Padma Vibhushan in 2000, Padma Bhushan 1990, Padma Shri 1975 for his remarkable contribution to the field of classical music. The International Astronomical Union named an asteroid after him, formerly known as 2006 VP32, as Pandit Jasraj, and it's wonderful to note that Pandit Jasraj is the first Indian musician to receive this honor. Here's a bhajan for you guys.
आज जयंती है भगवत दयाल शर्मा की। उनका जन्म 28 जनवरी 1918 को रोहतक हरियाणा में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था। वे हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अपने कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। बीडी शर्मा 23 सितंबर 1977 को ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए थे। इसके बाद वे 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल रहे।
The first citizen of India who had the privilege of becoming the first commander in chief, we remember today Kodandera Madappa Kariyappa on his birth anniversary. 1949, January 15, Kariyappa replaced the British commanding general Sir Roy Butcher. As army chief, Kariyappa had a mandate to transform the army left by the British into a national military force. In the process of accomplishing that task, he established
आज जयंती है भारतीय पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर की। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। अपनी अच्छी आवाज के बावजूद सुमन कल्याणपुर को फिल्मों में संगीतकारों ने अधिक अवसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनकी आवाज हूबहू लता जी से मिलती थी। सुमन कल्याणपुर का फिल्मों में आगमन ऐसे दौर में हुआ जब लता जी के खनकते कलदार सिक्के चलते थे। कोई संगीतकार लता जी के विरुद्ध सुमन कल्याणपुर से गवाने की हिमाकत कैसे कर सकता था। एक समय एचएमवी ने 50 प्रेम गीतों के 4 कैसेट्स जारी किए थे। उनमें अधिकतम 7 गीत सुमन द्वारा गाए हुए थे। उन्हें 1961 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2023 में पद्म भूषण, 1965 और 70 में मियां तानसेन पुरस्कार और 2009 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
Jim Capaldi was a major figure on the British rock scene from the 1960s into the new millennium. He achieved stardom as both a founding member of Traffic and a successful solo artist, an accomplished songwriter and instrumentalist who collaborated with several big-time bands and artists. Sadly, friend, he passed away this day in the year 2004 due to stomach cancer. Jim is most often remembered as a member of Traffic with Steve Winwood and Dave Mason.
आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार ओंकार प्रसाद नैयर की। उनका जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। अपने सुरों के जादू से आशा भोसले मोहम्मद रफी जैसे कई पार्श्व गायक और पार्श्व गायिकों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने वाले वे महान संगीतकार थे।
के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
Singer-songwriter Sarah McLachlan is born in Halifax, Nova Scotia, Canada this day 1968. And of course, she co-founded and headlined Lilith Fair, a concert tour featuring only lady performers. McLachlan received classical training in guitar, piano and voice. Rebelling against her conservative upbringing, she focused her musical talents on the popular punk and new wave music of the 80s. Happy birthday, Sarah.
Trying to find a way to carry on. आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की।
कानून रैयत के लिए है, बादशाहों और शहजादों के लिए नहीं।
डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर, जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बाग बहार है।
और अब समय है आपसे विदा लेने का। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। नमस्कार।